दीवा और आर्यांश होटल के बाहर निकल आए थे। दीवा को देखकर आर्यांश के जहन में किसी और की यादें ताज़ा हो गईं, जो बिल्कुल उसी की तरह थीं। कुछ पल उसे देखने के बाद आर्यांश गाड़ी की तरफ बढ़ा। आर्यांश ने देखा दीवा गाड़ी में बैठने के बजाय बाहर की तरफ जा रही थी। वो अपने लिए कैब बुक करना चाहती थी। आर्यांश उसके पीछे गया और आंखें घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठो। दीवा वहां मूर्ति की तरह खड़ी थी। साफ था वो आर्यांश की बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसकी हरकतें आर्यांश को चैलेंज कर रही थीं। आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तो तुम खेलने के मूड में हो? वैसे आग से खेलने का नतीजा अच्छा नहीं होता मिस गोयंका। मुझे तुम जैसे लोगों की आग बुझाना अच्छे से आता है, दीवा ने चिढ़कर कहा। उसका जवाब सुनकर आर्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। वो आईविंग करके बोला, वो तो कल रात मैंने देख ही लिया, तुम वाकई आग बुझाने में माहिर हो डार्लिंग। दीवा का शर्म से डूब जाने का मन कर रहा था। उसे खुद पर और गुस्सा आने लगा कि आखिर उसने आर्यांश से पंगा लिया क्यों। आर्यांश ने दीवा की कलाई को पकड़ा और खींचते हुए गाड़ी में बैठा दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आर्यांश ने गाड़ी स्टार्ट की। दीवा आर्यांश के साथ गाड़ी में जरूर थी, पर उन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। जिस तरह से उनकी पिछली रात बीती थी, ऊपर से थोड़ी देर पहले दीवा अपनी ही बातों के जाल में फंस गई, उसके बाद से दीवा आर्यांश की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी। दीवा तो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी, तो आर्यांश ने ही चुप्पी तोड़ना सही समझा। आर्यांश ने गहरी सांस ली और दीवा का ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्का सा खांसा। दीवा ने सवालिया नजरों से आर्यांश की तरफ देखा तो वो बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बताऊँ? दीवा ने उसे घूरते हुए कहा। वो आर्यांश को जानबूझकर परेशान कर रही थी। दीवा को लगा आर्यांश उसे मनाने के लिए मिन्नतें करेगा, लेकिन आर्यांश ने गाड़ी का यू टर्न लिया और कहा, ठीक है फिर मेरे घर चलते हैं, लेकिन बाद में वहां जो भी हो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अरे नहीं रुको, दीवा ने जल्दी से कहा। एक बात तो साफ थी कि आर्यांश इतनी आसानी से घटने टेकने वालों में से नहीं था। आर्यांश ने हल्का हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, अब पता बताने के लिए तैयार हो या मेरे घर चलना है? सनशाइन अपार्टमेंट, दीवा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मजबूरी में उसे आर्यांश को अपना एड्रेस बताना ही पड़ा। अगर दीवा उसे अपना एड्रेस नहीं भी बताती तो आर्यांश पता लगा ही लेता। आर्यांश ने अपनी गाड़ी दीवा के अपार्टमेंट की तरफ मोड़ ली। वहीं दीवा बाहर की तरफ देख रही थी। मौसम काफी अच्छा था, पर उसका मूड इतना खराब था कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो इस वक्त आर्यांश के सामने रो भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर में गाड़ी दीवा के अपार्टमेंट के आगे थी। दीवा ने अपना बैग लिया और उठकर जाने लगी। आर्यांश ने पीछे से तेज आवाज में कहा, इतनी हसीन रात के बाद एक अच्छा बाय तो बोल ही सकती हो। दीवा ने पलटकर उसकी तरफ घूरते हुए देखा। वो आंखों ही आंखों में कह रही थी कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। आर्यांश ने हवा में हाथ हिलाते हुए बाय कहा और फिर वहां से चला गया। घर आने के बाद दीवा ने थोड़ी देर आराम किया और फिर वो तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंची। आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए उसके पास पेशेंट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। दीवा ने पहले पेशेंट को बुलाया। उसने नाम भी ठीक से नहीं देखा था। उसके केबिन का दरवाजा खुला और सामने से एक सूट बूट पहने हैंडसम सा लड़का उसके सामने आकर बैठ गया था। दीवा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने आर्यांश बैठा था, जिसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। दीवा ने इरिटेट होकर गहरी सांस ली। वो अच्छे से जानती थी आर्यांश उसे वहां परेशान करने के लिए आया है, लेकिन हॉस्पिटल में होने की वजह से वो उसे वहां से निकाल भी नहीं सकती थी। दीवा ने काफी शांत लहजे में पूछा, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आर्यांश ने अपने सीने पर उंगली रखी और उसे हल्का सा टैप करते हुए कहा, एग्जैक्टली यहां दर्द हो रहा है डॉक्टर, और कल रात से तो दर्द बहुत बढ़ गया है। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी हरकतें दीवा को चिढ़ा रही थी, पर दीवा ने खुद को काबू रखा और नीचे नोटपैड में कुछ लिखने लगी। वो उसकी तरफ देखे बिना बोली, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं डॉक्टर, बस इतना ही, आर्यांश बोला और फिर उठकर अपना ब्लेजर उतार दिया। वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। उसे ऐसा करते देख दीवा बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। वो जल्दी से बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको ठीक से मेरा चेकअप करना होगा ना, इसलिए शर्ट निकाल देता हूँ ताकि आप ठीक से चेक कर सकें डॉक्टर, आर्यांश बोला और उसने अपनी शर्ट पूरी तरह निकालकर साइड में टांग दिया था। आर्यांश की बॉडी काफी फिट थी, उसे इस पर काफी घमंड भी था। आखिर जिम में घंटों मेहनत करके उसने इतनी फिट बॉडी हासिल की थी। उसके सिक्स पैक एब्स उसे और भी हैपनिंग बना रहे थे। दीवा आर्यांश के पास आई और स्टेथोस्कोप उसकी चेस्ट पर रखकर चेक करने लगी। उसके दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद दीवा ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे हल्का सा दबाया। अगर आर्यांश को कोई प्रॉब्लम होती तो उसके दबाने पर वो चिल्ला पड़ता, लेकिन वो तो मुस्कुराते हुए दीवा की करीबी को महसूस कर रहा था। वो इस लम्हे को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। दीवा का मन किया कि वो पुलिस या उनके डायरेक्टर को बुलाकर आर्यांश की शिकायत लगा दे, पर उसने खुद को काबू रखा। दीवा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ये जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए यहाँ पर आया है। अगर मैंने कुछ भी रिएक्ट किया तो ये और तंग करेगा। दीवा ने गहरी सांस ली और आर्यांश से कुछ कदम दूर होकर बोली, ठीक है, आप बिल्कुल फिट है मिस्टर कपूर, कई बार थकान की वजह से ये सब हो जाता है। मैं आपको मेडिसिन लिख देती हूँ, आप उन्हें लेकर आराम कीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वापस हॉस्पिटल आ सकते हैं। दीवा ने अपना काम कर दिया था, फिर भी आर्यांश वहां से जाने के बजाय वहीं पर खड़ा था। उसने भौहें उठाकर सीरियस अंदाज में कहा, क्या तुम श्योर हो कि मैं सच में ठीक हूँ? कहीं मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो गई डॉक्टर? मिस्टर कपूर, आप बिल्कुल ठीक हैं, दीवा ने दांत पीसते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। दीवा ने उसका ठीक से चेकअप भी नहीं किया था, आखिर आर्यांश नकली पेशेंट बनकर आया था तो वो क्यों उसके चेकअप करके अपना टाइम वेस्ट करती। दीवा को लगा अब तो आर्यांश वहां से चला जाएगा, लेकिन वो वहीं पर खड़ा था। उसने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, जब सब ठीक है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर, ये मोहब्बत का दर्द है? ऐसा कोई दर्द नहीं होता है मिस्टर कपूर, प्लीज अब आप यहाँ से जाइए, मुझे और भी पेशेंट चेक करने हैं, दीवा ने काफी शांति से कहा। उसका बस चलता तो वो आर्यांश को पकड़कर वहां से धक्के देकर बाहर निकालती। तुम किसी काम की डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर नौकरी किसने दी है? जब तुम मेरी बीमारी नहीं बता पा रही हो तो बाकी पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगी? आर्यांश ने उसे उकसाने के लिए कहा। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है कि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप अपनी चेस्ट का एक्सरे करवा लीजिए, उसके अलावा मेरे पास एक और बेहतर ऑप्शन है। कई बार कुछ लोगों को बीमारी होने का वहम हो जाता है, ऐसे में आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, दीवा ने चिढ़ते हुए कहा। दीवा आर्यांश को इनडायरेक्टली पागल कह रही थी, उसकी जगह ऐसा कोई और कहता तो आर्यांश उसकी जान ले लेता, पर अफसोस की बात यह थी कि इस वक्त उसे गुस्सा आने की बजाय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आर्यांश ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, तुमने मेरा ठीक से चेकअप नहीं किया। शौक से लगाइए, अच्छा होगा जो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और बार बार मुझे आपका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, दीवा ने लाचारी से कहा।
उसे इस कदर परेशान करके आर्यांश को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, नाराज क्यों हो रही हो, शिकायत नहीं करूंगा, अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए मैं प्रॉब्लम थोड़ी ना खड़ी करूंगा। वैसे गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो, ऐसा करते आज रात को डिनर पर मिलते, तब आराम से गुस्सा निकाल लेना। आर्यांश की बातें दीवा को सच में और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। एक तो वो उसे तंग करने के लिए यहां तक चला आया था, ऊपर से उसे फ्यूचर वाइफ तक का नाम बुला रहा था। दीवा ने हाँ तक नहीं कही थी, फिर भी उसने आज रात के लिए डिनर डेट सेट कर ली थी। आज रात को मिलते हैं, आर्यांश ने ब्लेजर उठाते हुए कहा। मैंने हाँ नहीं कही है, तुम्हारे साथ खाना खाते हुए मुझे उल्टी आती है, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। बस इतनी सी बात, तुम उल्टियाँ कर लेना, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर अरेंज कर दूंगा। क्यों ना ऐसे करते हैं, होटल में एक रूम भी बुक कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर सकूं, आर्यांश बेपरवाही से बोला। आर्यांश की बातें अब दीवा के बर्दाश्त के बाहर हो रही थीं। उसने आर्यांश को कमर से पकड़ा और उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, तुम निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, पर आज रात 7 बजे तुम्हारा उसी होटल में वेट करूंगा, आर्यांश ने आई विंक करके कहा और फिर वहां से हंसते हुए चला गया। आर्यांश के जाने के बाद दीवा ने पानी पिया। इतना सब कुछ ड्रामा, वो उसे सिर्फ एक डिनर इन्विटेशन के लिए कर रहा था। आर्यांश और उसकी हरकतें दीवा को बहुत इरिटेट कर रही थीं, पर आर्यांश जिस तरह से उसे इनविटेशन देने के लिए हॉस्पिटल तक आ गया था, उससे साफ था कि वो चाहकर भी आज रात के डिनर डेट को इग्नोर नहीं कर सकती थी। अगर वो नहीं भी जाती तो आर्यांश अपने आदमी भेजकर उसे उठवा लेता। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है, आर्यांश ये सब दीवा का दिल जीतने के लिए कर रहा है या फिर ये उसके लिए कोई गोल्डन ट्रैप है, जैसा कि कहानी का टाइटल है? चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं, और प्लीज़ आप लोग पढ़कर रेटिंग और कमेंट दिया करो ताकि लेखक को भी लिखने में मोटिवेशन मिले।